आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक, सत्र के सुचारू संचालन पर बनी सहमति। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ, कहा इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में जश्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अगर इरादे नेक हों तो हर काम हो जाता है बेहतर। और अहमदाबाद में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, उत्तराखंड को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने आज सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक के बाद स्पीकर ने मीडिया को बताया कि सभी दलों ने सत्र के सुचारू संचालन पर सहमति व्यक्त की।
सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है चले गए उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए आपेक्षिक सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के विधायकों की एक बैठक हुई। एटीआई भवन में आयोजित बैठक में सत्ता पक्ष द्वारा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। इधर सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक 7 दिसंबर को होगी। इसमें सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि समाज, समुदायों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से देश बाल विवाह मुक्त भारत बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
हमारे संवेदनशील नीतियों और समुचित अवसरों ने उन्हें अटूट विश्वास दिया है कि आज हर बेटी की आवाज गूंज रही है, मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है। और मुझे खुशी है कि सरकार, समाज और परिवार सभी मिलकर इस आवाज को मजबूत कर रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है, हमें और अधिक दृढ़ता के साथ बेटियों के हित में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यह हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है।
हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी करने के आदेश के बाद आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इरादे नेक हों तो हर काम बेहतर होता है।
यहाँ के नौजवान, यहाँ के हर तबके के लोगों का जो उम्मीद है वो उम्मीद किस तरीके से भरोसे में बदल और ये कारवा चलता रहेगा। ईमानदार प्रयास हो तो परिणाम भी अच्छा आता है और बहुत आभार प्रकट करते हैं कि न्यायालय ने इस पत्र और इस आज में दंडाधिकारी लोगों को।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के कम्प्लेन केस पर सिविल कोर्ट के सीजीएम द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अपना जवाब पेश करे। साथ ही को हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया। झारखंड शराब घोटाला मामले की जांच कर रहे एसीबी ने कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर और पूर्व उत्पाद आयुक्त आईएएस अधिकारी अमित कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने उन्हें समन भेजकर कल पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। इस मामले में आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार, मनोज कुमार, कर्ण सत्यार्थी और फैज अहमद मुमताज से भी पूछताछ की जा चुकी है। इधर जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की साली प्रियंका त्रिवेदी से एसीबी ने आज पूछताछ की। एसीबी की एक टीम प्रियंका त्रिवेदी के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। इससे पहले 3 दिसंबर को एसीबी की टीम ने विनय चौबे की पत्नी से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। गौरतलब है कि एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें भ्रष्टाचार करने और इसके जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। इस प्राथमिकी में उनके रिश्तेदारों और दोस्त विनय सिंह समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदर और दारू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम चलाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धनबाद के बलियापुर अंचल स्थित बेलगढ़िया टाउनशिप में नवनिर्मित टाउन आउटपोस्ट TOP का उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि बेलगढ़िया टाउनशिप को अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास नीति के तहत विकसित किया जा रहा है।
तो जितने भी संस्था है वो सब संस्था इसी टाउनशिप में ही होगा। इनकी जो दूर जाकर समस्या सॉल्व होने वाली थी वो सब यही स्थानीय स्तर पर सॉल्व हो। धनबाद में जो फायर इफेक्टेड एरिया है अभी कि वहां से जितने लोग हताहत हो रहे हैं उनको एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा घर दे पाए। अभी 24 फैमिलीज को अलॉटमेंट हो गया।
दुमका में रविवार की रात IG और DIG आवास के पास स्थित एक होटल को निशाना बनाकर अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही बाकी अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल देवघर पहुंच रहे हैं। 6 दिसंबर को वे देवघर में बने पार्टी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 5 दिसंबर की शाम को देवघर पहुंच रहे हैं। वो संथाल में कई कार्यक्रमों को आयोजन करेंगे, साथ ही संथाल के जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। उनका कार्यक्रम देवघर में जिला कार्यालय के उद्घाटन का है। जिला कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही वो प्रदेश सहित कई कमेटियों का भी बैठक करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। झारखंड की राजनीति पर उनकी विशेष नजर है, ताकि अभी यहां से बंगाल चुनाव भी होना है, इसलिए देवघर में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को कई संदेश देंगे ताकि बंगाल में भी उसका असर पड़े। आशीष कुमार, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग रांची ने कल राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों के क्षेत्र में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल दिन की शुरुआत कोहरा या धुंध से होगी, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड A में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तराखंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। झारखंड ने 16 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट होकर 152 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। झारखंड के अनुकूल रॉय को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने गेंदबाजी में 3 विकेट चटकाए जबकि 16 नाबाद रन भी बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक, सत्र के सुचारू संचालन पर बनी सहमति। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ, कहा इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत। JSSC CGL परीक्षा का परिणाम जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में जश्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अगर इरादे नेक हों तो हर काम हो जाता है बेहतर। और अहमदाबाद में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, उत्तराखंड को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।